आज खुशबीर सिंह शाद भी मौजूद हैं, जो मेहमान शायर के तौर के ऊपर हिंदुस्तान से आए हुए हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। खुशबीर सिंह शाद साहब, मैं SBS रेडियो के उर्दू प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
खुशबीर साहब, आपका तारुफ तो आपका कलाम है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पहले हमें सामईन को एक शेर सुनाएं, फिर उसके बाद हम एक सेगमेंट चलाएं और फिर उसके बाद आपसे बातचीत के लिए वापस आएं।
देखिए, एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ कि ये सच है चंद लम्हों के लिए बिस्मिल तड़पता है, ये सच है चंद लम्हों के लिए बिस्मिल तड़पता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी कातिल तड़पता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी कातिल तड़पता है, और भंवर जब भी किसी मजबूर कश्ती को डुबोता है, भंवर जब भी किसी मजबूर कश्ती को डुबोता है, तो अपनी बेबसी पर दूर से साहिल तड़पता है।
वाह, बहुत खूब। और सामईन, इन अशार को सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने जिन शायर को आज अपने स्टूडियो में बुलाया है वो किस कमाल के शायर हैं। उनकी तकरीबन 9 मजमूए भी आ चुके हैं, बहुत से एजाजात भी उन्होंने हासिल किए हैं। खुशबीर सिंह शाद साहब, खुशबीर साहब, ये फरमाइएगा कि शायरी का रोग कैसे लगा?
तो वो है कि मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था, यही कह सकता हूँ। अब ये एक्चुअली मेरे ख़ानदान में कहीं कोई ऐसा माहौल नहीं था। मेरे वालिद इंजीनियर थे, मेरे नाना इंजीनियर थे, मेरे दादा कारोबारी थे, लेकिन अब शायद लखनऊ की आबो हवा का असर था या क्या था, बचपन से ही मैं बड़ा हसास तबीयत का था और मुझे ये गिरदो पेश का जो माहौल था वो बहुत मुतासर करता था, बहुत सेंसिटिव था मैं। तो अचानक मुझे लगा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैंने उसको लिखना शुरू किया। जाहिर है कि वो बिल्कुल नामौजू, और तो ऐसे करते करते फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती थी, मैंने उर्दू स्क्रिप्ट सीखी 40 साल की उम्र में, और फिर बाकायदा ये सिलसिला शुरू
हुआ। अच्छा, मतलब कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं संजीव सारिफ साहब से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 53 साल की उम्र में उर्दू स्क्रिप्ट सीखा। तो क्या कोई ऐसी शख्सियत भी थी जिसने आपकी इब्तदाई शायरी को सराहा, आपकी हौसला
अफजाई की? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर शायर मेरे उस्ताद वाली आसी साहब, लखनऊ के बहुत बड़े शायर, लखनऊ स्कूल के शायर थे। दरअसल मेरी उनसे जो उनसे पहले की मुलाकात थी, वो मेरे उस्ताद नहीं थे, हम उनको वाली भाई कहते थे, तो उनकी दुकान पे, तो अचानक एक दिन मैंने उनको अपना एक शेर सुनाया, अकेले बैठे हुए थे, तो मैंने कहा वाली भाई ये शेर सुनिए। तो उन्होंने सुना, कहने किसका है? तो मैंने कहा साहब ये मेरा शेर है। तो वो हैरान हुए, कहने तुम शेर भी कहते हो? फिर बाकायदा फिर उन्होंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ, तो फिर उन्होंने बाकायदा मेरी इसलाह करना शुरू की और मैंने उनको अपना उस्ताद बनाया। तो करीब
उस्ताद बनाते वक्त क्या उन्होंने आपको ये भी बताया कि भाई साहब ये शायरी वायरी में कहाँ जा रहे हैं, इसमें कुछ कमाई नहीं होती?
नहीं, बहुत कहा। अरे साहब, पहला जुमला उनका यही था कि तुम जिस खानदान से हो तो भाई ये सब तुम्हारे बस का नहीं है और ये घाटे का सौदा है। और उन्होंने वो बात आज तक मुझे याद है, उन्होंने कहा था देखो ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप दौड़े और गले में तमगा पहन लिया, ये जिंदगी भर की मैराथन है, उसके बावजूद भी कहीं आप पहुंचेंगे या कुछ हासिल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये सोच के तुमको इस मैदान में अगर आ सकते हो तो आओ। और जाहिर है कि तुम एक लिखे पढ़े खानदान से हो जो पंजाबी हो, और तुम्हारे खानदान में ये सब शायरी का वो रोग नहीं है किसी को, तो तुम हो सके तो बचो, लेकिन वो बचना कहाँ था साहब।
ये तो ऐसी लगने वाली शय है कि जिसको लग जाए इस रोग से वो बचता नहीं है। ये बताइए कि आपने लिखा भी बहुत ज्यादा, आपकी तकरीबन 11 के करीब किताबें आ गई चुकी हैं, एक पाकिस्तान से भी आपकी किताब शाई हुई है, आपको बहुत से एजाजात भी मिले हैं जिसमें एक बड़ा एजाज आपको मिला है, जरा उसका भी जिक्र कीजिएगा।
जी, ये हमारे एक्चुअली उत्तर प्रदेश जो है सूबा है हमारे इंडिया में सबसे बड़ा, तो वहाँ की सरकार का ये सबसे बड़ा इनाम है यश भारती। तो ये मुख्तलिफ मैदानों के लोग जो हैं वो उनको जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कुछ शायरी में हो, एक्टिंग में हो, किसी भी मैदान में हो, तो वो जो सिलेक्टेड लोग हैं तो उनका इंतखाब होता है, बहुत सख्त इंतखाब होता है। तो पिछले 2014 में ये अवार्ड मुझे 11 लाख रुपए का ये अवार्ड है, और अब यूपी गवर्नमेंट ने जो यश भारती अवार्डीज़ हैं उनके लिए 50,000 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की है।
और बातें करने के लिए बहुत हैं लेकिन स्टूडियो की घड़ियां कह रही हैं कि इतना ज्यादा वक्त नहीं, मैं चाहता हूं ये आखिर के 2 मिनट जो मेरे पास बचे हैं उसमें कुछ आपके अशार अगर अता हो जाए उसी पे हम अपना प्रोग्राम खत्म
करें। मैं कहता हूं, देखिए एक मतलब और 2-3 शेर कि अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं, بس یہی سوچ کے تسکین سی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ بھی دنیا سے خفا بیٹھے ہیں.
بہت خوب.
اور دیکھ لے جانے وفا آج تیری محفل میں, دیکھ لے جانے وفا آج تیری محفل میں ایک مجرم کی طرح اہل وفا بیٹھے ہیں. اور یہ شعر کی ایک ہم ہیں کہ پرستش پہ عقیدہ ہی نہیں, ایک ہم ہیں کہ پرستش پہ عقیدہ ہی نہیں اور کچھ لوگ یہاں بن کے خدا بیٹھے ہیں. ایک ہم ہیں کہ پرستش پہ عقیدہ ہی نہیں اور کچھ لوگ یہاں بن کے خدا بیٹھے ہیں.
کچھ اور بھی عطا کیجیے, صرف ایک منٹ اور ہے. میسیجز بھی آ رہے ہیں. مطلب
کہ سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں, مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں. ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا, مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں.
بہت.
اور ہم اہل شہر کی خواہش کے مل جل کر رہیں, لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں.
بہت عمدہ, بڑا موقع محل کے حساب سے سیاسی شعر بھی ہے, اور آپ نے جس طرح اس میں بات پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ ہمارے سامعین تک بھی پہنچ رہی ہے. اتنی باتیں ہیں, اتنی کتابیں ہیں, اتنے اعزازات ہیں کہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت. ہم اپنے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے.
آپ کا شکریہ ریحان صاحب کہ آپ نے یہاں مجھے بلایا اور میرے سننے والوں سے تعریف کرایا.